दिन 6 सितंबर 1965, समय दोपहर 2 बजे, स्थान पाकिस्तान का पेशावर एयरबेस। स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद नोजी हैदर ने अपने साथी पायलटों से कहा कि वो 2 घंटे की नींद ले लें। जब वो 4 बजे जागेंगे तो वो उन्हें पठानकोट पर हवाई हमले के बारे में ब्रीफ करेंगे। जब वो सब लोग ब्रीफिंग के लिए इकट्ठा हुए तो सज्जाद हैदर ने वहां खड़े एक नेविगेटर से एक बाल्टी लाने के लिए कहा।
मैंने एक और नेविगेटर खड़ा, मैंने कहा आप इसमें करें कि एक बाल्टी लें और उसमें बर्फ डालें बहुत सारी और पानी से भरें, और 4711 जो कि मेरी वालदा मोहतरमा का बड़ा फेवरेट फिल्म था, मैंने कहा उसकी एक बोतल ला के उसको उसमें डाल दें और उसमें 12 तौलिए छोटे हैंड टॉवल जो होते हैं वो उसमें डाल के भिगो दें। तो मेरी तरफ देख के परेशान सा हो गया, मैंने कहा सर आप खैरियत है? मैंने कहा इन पायलट की हालत देखो, इनके कवरऑल जो है इनके ऊपर सॉल्ट जो है बॉडी से, जो सितंबर का महीना बड़ा गर्म था और वो पसीने से सारा जो ओवरऑल थे वो सारे सफेद थे। तो मैंने कहा इनमें से जो शहीद होंगे तो जब ऊपर पहुंचेंगे तो कम से कम इनमें से बदबू तो नहीं आनी चाहिए, तो वो सब हंसने लगे।
फिर उन्होंने हमले की पूरी रणनीति बनाई और अपने साथी पायलटों को उनके रोल समझाए।
मेरे जो 9वां और 10वां था वो एक विंग कमांडर सवाब थे, तो बाद में बांग्लादेश के कमांडर चीफ भी बने मेरे उसी फ्लाइंग से पहले, लेकिन वो वॉर में मेरे नीचे मेरे माता स्क्वाड्रन में उनको अपॉइंट किया गया था, उनको मैंने एस्कॉर्ट किया था, और दूसरा था उसके साथ अरशद सनी। तो इन दोनों को मैंने कहा कि आप एस्कॉर्ट होंगे मिसाइल्स एयर टू एयर डायरेक्ट मिसाइल्स के साथ, और मैंने उनको खास ब्रीफिंग दी कि आपने ये प्रोफाइल करनी है हमारे साथ। और मैंने अपने स्क्वाड्रन को ब्रीफ ये किया था कि किसी सूरत में अगर वहां पे हमें जाहिर है कि हमें इंटरसेप्ट किया जाएगा पठानकोट से, उनके बहुत जहाज होंगे, लेकिन कोई फॉर्मेशन को उनसे लड़ेगा नहीं। मैंने कहा कि तवाब साहब आपने 4 जहाज तक अगर आपके साथ है तो आप दोनों उनके साथ निपटेंगे, मेरी फॉर्मेशन से कोई नहीं जाएगा। अगर उनके 4 से ज्यादा आए तो फिर सिर्फ आखिरी 2 जो है जिसमें थे कनी अकबर अब्बास और दूसरा ये अब्बास खटक जो बाद में एयरफोर्स चीफ बने फ्लाइंग ऑफिसर था, मैंने कहा ये ब्रेक ऑफ करेंगे, लेकिन 6 जहाज हर सूरत में उन्होंने अपने प्राइमरी मिशन को परफॉर्म करना है।
ठीक 4:30 बजे 8 साइबर जेटों ने एक के बाद एक पेशावर से टेक ऑफ किया। वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर गए और फिर नीचे डाइव लगाकर पेड़ों की ऊंचाई पर उड़ने लगे ताकि भारतीय रडार उनकी गतिविधि को पकड़ न सके। ठीक उसी समय पठानकोट एयरबेस पर अमृतसर रडार स्टेशन से स्क्वाड्रन लीडर दंडापानी का एक अर्जेंट टेलीफोन कॉल आया। पीवीएस जगनमोहन और समीर चोपड़ा अपनी किताब इंडिया पाकिस्तान एयर वॉर ऑफ 1965 में लिखते हैं,
दंडपाणी ने स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन रोशन सूरी से बात करनी चाहिए, लेकिन वो कहीं और व्यस्त थे। उनकी जगह विंग कमांडर कुरियन ने फोन उठाया। उन्होंने कुरियन को बताया कि कुछ सेबर जेटों को टेक ऑफ करने के बाद रडार के पर्दे से गायब होते हुए देखा गया है, लेकिन एक विमान 19,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहा है, ये शायद आने वाले हमले के संकेत है। दंडपाणी कहते हैं कि कुरियन ने इस चेतावनी को हल्के में लिया। उधर कुरियन का कहना है कि उन्होंने ग्रुप कैप्टन रोशन सूरी से कैप यानी कॉम्बैट एयर पेट्रोल की अनुमति मांगी थी, लेकिन सूरी ने इसकी अनुमति नहीं दी।
ठीक 5:05 पर पाकिस्तानी सेबर पठानकोट के नजदीक पहुंच गए, तभी सज्जाद हैदर के कंपास में कुछ हरकत हुई।
रास्ते में मेरी कंपास में बहुत हरकत थी, उस वक्त तकरीबन 50 फुट की बुलंदी, जमीन से 50 फुट के ऊपर बढ़ रहे थे और 420 नॉट्स यानी 500 से ऊपर मील घंटा की रफ्तार से हम जा रहे थे। तो मैंने देखा तो मैं तकरीबन 2-3 मील अपने ट्रैक से दाईं तरफ था, तो मैंने अपने वो विंग जो है उनको हम हिलाते हैं, उससे वो ब्रीफिंग होती है कि हम बात नहीं करते रेडियो के ऊपर क्योंकि दुश्मन सुन सकता है। हालांकि हम यूएचएफ पे थे, मुश्किल था, लेकिन बहरहाल हमने वो डिसिप्लिन की ब्रीफिंग की हुई थी। तो मैंने जब वो किया तो दिलावर हुसैन जो मेरा नंबर 3 था वो आया मेरे नजदीक और मैंने उसको इशारा किया कि ये वो हमारे इशारे खास तौर के होते, मैंने कहा कि ये भी डायरेक्शन का बताओ, तो उसने मुझे डायरेक्शन का वो बता के उसने मुझे 5 उंगलियां दिखाई, तो फिर मैंने 5 डिग्री की करेक्शन की।
उन्होंने 2 भारतीय जहाजों को एयरबेस पर उतरते हुए देखा।
उस वक्त तक हम तकरीबन पठानकोट से शायद अबाउट 14 या 16 मील करीब थे जब मैंने 2 जहाज उनकी वो चमक उनके सूरज की चमक आ रही थी, उस वक्त 10 का वक्त हो रहा था, तो वो हमारे ऊपर से दाईं तरफ से आए हैं और मैंने देखा तो मैंने उस वक्त सोचा कि इनको अनाउंसमेंट कोई करे ना, तो मैंने अपने ट्रांसमिट करके मैंने अपनी फॉर्मेशन को कहा कि स्टैंड बाय 2 मिनट्स
नोजी हैदर ने 500 मीटर की ऊंचाई से बहुत संभल कर डाइव लगाई।
जब डाइव में जाने लगा तो मैंने देखा कि दो मिग 21 सामने बिल्कुल पेंस के अंदर अपने वो महावस्ती जो होते हैं जिनमें जहाज को हिफाजत में रखा जाता है उनमें देखा, तो मैंने ट्रांसमिट किया। मैंने कहा कि बॉयज मिग 21 अराउंड, तो मैंने अटैक में पहले मिग 21 को आई हिट इट एंड आई कॉल्ड आउट, मैंने कहा आई गॉट इट। तो मैंने पुल अप किया, उसके बाद नंबर टू जो था जाहिर है कि वो मेरे लेफ्ट की तरफ था और उसने एक मिस्टेक पे अटैक किया। नंबर थ्री था खालिद लतीफ, ही गॉट द सेकंड मिग 21 एंड ही गॉट हिम स्ट्रेट ऑफ। उसके बाद कईयों ने क्लेम किए मिग 21, लेकिन असल में ये पॉसिबल था कि वो ब्लो अप नहीं हुए पहले अटैक में, लेकिन लग चुकी थी गोलियां उनको, बिल्कुल वो क्लियर था। तो उन्होंने एक दो ने और भी वो क्लेम किए, लेकिन सिर्फ दो थे जो तबाह हुए। तो इस तरह हमने तीन अटैक किए और चौथे में हम जा रहे थे, तो उस वक्त मो अकबर ने मुझे ट्रांसमिट किया एंड ही सेड लीडर नॉट फेयर, तो आई सेड ओके वी आर एग्जिटिंग नाउ, सो आई कॉल्ड आउट। तो हम एग्जिट कर रहे थे तो वहां पर पठानकोट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल मुझे सामने नजर आया और मेरा नंबर टू जो था अरशद चौधरी बाद में एयर मार्शल बना, फ्लाइंग ऑफिसर था, यंगेस्ट बॉय, वो मेरे विंग पे था, ही हैड जॉइंड अप बाय दैट टाइम बिफोर इवन आई हैड क्रॉस एयर फील्ड। और उस वक्त हमें एक वहां पे इनका वो कैरेबू नजर आया C-119, तो मैंने कहा कि C-119 आई हैड, तो उसने नंबर टू ने कहा लीडर अलाउ मी टू टेक इट ऑन, तो मैंने कहा ओके बट डोंट हिट माय विंग, बिकॉज़ ही वाज लाइक इन लाइन विद माय विंग। एनीवे ही शॉट इट एंड ही शॉट गॉट इट एंड ही गॉट इट, ही ब्लू इट अप एंड दैट इज हाउ वी एग्जिटेड।
उनका विरोध करने के लिए एक भी भारतीय विमान ऊपर नहीं आया। पाकिस्तानी वायुसेना पर किताब लिखने वाले पुष्पिंदर सिंह कहते हैं,
चार सेबर हाई लेवल पे थे एयर कवर, आठ सेबर लो लेवल पे, और जब वो पहुंचे पठानकोट के ऊपर उन्होंने सोचा काफी इंडियन एयरफोर्स के नेट्स या जो भी हैं एयरक्राफ्ट होंगे कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए, कुछ नहीं उनको मिला। उन्होंने सोचो रड़े मैदान पे अपने स्ट्राफ किया और हमारे बहुत जहाज उन्होंने डिस्ट्रॉय किए। अपने डिफेंस मिनिस्टर से चवान, उन्होंने अपनी मेमोर्स में बाद में लिखा कि हमारे 11 जहाज डैमेज और डिस्ट्रॉय हुए थे।
जब ये हमला हो रहा था विंग कमांडर कुरियन अपने घर से सटे गैरेज में अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे, उन्हें अचानक विमान भेदी तोपों के गरजने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि चार सेबर नीचे उड़ते हुए मशीन गन से गोलियां बरसा रहे हैं और दो F-104 स्टार फाइटर उन्हें ऊपर से कवर दे रहे हैं। जैसे ही चार सेबर वहां से हटे, दूसरे चार सेबरों ने उनकी जगह ले ली। लगभग उसी समय लैंड कर चुके जनक कपूर अपने नेट को ब्लास्ट पेन के अंदर ले जा रहे थे। PBS जगन मोहन और समीर चोपड़ा लिखते हैं,
एक जूनियर अफसर ने चिल्लाकर कहा, सर ऊपर देखिए वो हमला कर रहे हैं। इस बीच एक सेबर ने मर्देश्वर के नेट को भी ब्लास्ट पेन में घुसते हुए देखा, उसने उन पर भी गोलियों की बौछार कर दी। मर्देश्वर जहाज से नीचे कूदकर भागे और तभी उन्होंने देखा कि उनका नेट आग में धू धू कर जल रहा है।
उधर तीन स्क्वाड्रन के फ्लाइट लेफ्टिनेंट त्रिलोचन सिंह अपना मिस्टियस जहाज ब्लास्ट पेन में पार्क कर नीचे उतर ही रहे थे कि एक सेबर ने उनके विमान पर हमला किया। उस समय पठानकोट बेस का सिर्फ एक मिस्टियस विमान हवा में था, उसे उड़ा रहे थे युवा फ्लाइंग ऑफिसर माइक मैकमोहन। उन्होंने कुछ दिन पहले ही वायुसेना ज्वाइन की थी और वो एक अभ्यास मिशन पर थे। उन्हें रेडियो ट्रैफिक से निर्देश दिया गया कि वो पठानकोट से दूर रहें और पाकिस्तानी हमला गुजर जाने के बाद उतरे। पाकिस्तानी मैकमोहन को नहीं देख पाए, वो बाल बाल बचे और बाद में भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल बने। उस समय पठानकोट में तैनात एयर मार्शल राघवेंद्रन सुब्रमण्यम ने अपनी आत्मकथा पैंथर रेड वन में लिखा,
हम करीब 6-7 पायलट एक गड्ढे में एक के ऊपर एक लेटे हुए थे। सबसे नीचे वाला पायलट चिल्लाया, मेरा बोझ से दम घुटा जा रहा है। सबसे ऊपर वाले पायलट ने, जिसका बॉटम गड्ढे के ऊपर दिखाई दे रहा था, जवाब दिया, मुझसे अपनी जगह बदलोगे।
बाद में कहा गया कि अगर भारत ने अपने चार नेट हवा में भेज दिए होते तो पाकिस्तानी इतना नुकसान नहीं कर पाते। उसी दिन पाकिस्तानी विमानों ने हलवारा और आदमपुर पर भी हमला किया, लेकिन वहां भारतीय विमान उनका मुकाबला करने के लिए पहले से तैयार थे। पाकिस्तानी विमान इन दोनों एयरबेसों के ऊपर तक से भी नहीं गुजर पाए। एयर वाइस मार्शल विनय कपिला स्वीकार करते हैं।
That the surprise element was in their favor. उन्होंने पठानकोट में सरप्राइज किया, कलाईकुंडा में उन्होंने सरप्राइज किया, हम वहाँ पे फॉर सम रीजन और दी अदर वी वर नॉट एडिक्वेटली फोरवॉर्न्ड और प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मगर और किसी एयरफील्ड पे हलवारा पे कुछ नहीं कर पाए, आदमपुर पे कुछ नहीं कर पाए, अम्बाला पे कुछ नहीं कर पाए, और इधर आप देख जाओ नीचे हलवा ये राजस्थान वगैरह में, ये कहना यस दे हैड द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, दे हैड डन द प्री प्लानिंग। अभी एनालिसिस वगैरह आप जब पढ़ते हैं तो उनका यह पक्का प्लान था स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम दैट कच्छ थिंग, उन्होंने क्या क्या करना है, तो उन्होंने पूरा अपना प्री प्लान कर रखा था एंड दे कॉट अस बाय सरप्राइज, बट आर रिएक्शन एंड देयरफॉर एंड सब्सिक्वेंट एबिलिटी टू कॉम्बैट देम एंड न्यूट्रलाइज देम वाज गुड।
भारतीय वायुसेना के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। पाकिस्तान के सैनिक इतिहासकार एयर कोमोडोर कैसर तुफैल मानते हैं कि विमानों से ज्यादा इसने भारतीय वायुसेना के मनोबल को नुकसान पहुंचाया।
14 जहाज चले गए, 4,450 जहाजों में से तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसका जो मोरल के ऊपर असर था कि एक छोटी सी एयरफोर्स ने हमला किया और एक बेस जो था उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया, तो उसका जो असर मेंटेनेंस पर्सनल और जो पायलट्स के ऊपर था और जो इंडियन एयरफोर्स की लीडरशिप के ऊपर था, उसमें यह था कि जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स उनके ऊपर हावी हो गई है, और ये एक किस्म का जैसे कहते हैं जो एक ट्रेंड सेट हो गया था पहले दिन ही पहले अटैक में ही, मेरा ख्याल है कि उसका काफी जो साइकोलॉजिकल असेंडेंसी जैसे कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को मिल गई।
हमले में शामिल हर एक पाकिस्तानी पायलट को सितारे जुर्रत दिया गया। उन 8 पाकिस्तानी पायलट्स में से एक थे मशहूर गायक अदनान सामी के पिता फ्लाइंग ऑफिसर अरशद सामी।
उड़ान ये चाहे जिंदगी सोचो कि अंबर तक पहुंचे हम कभी
फजल, BBC दिल्ली।